यह प्रवचन परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया दिनांक 25/4/2014 श्री राधा पार्षदी नई दिल्ली। पापा जी कृष्ण पात्र लीलामृत
श्लोक का उच्चारण यमदूत कर रहे हैं। भागवतम के छठे स्कंध में ये प्राचीन कथा पढ़ते हो आज भी उनकी। शुक्रदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा था कि ये शिक्षा दीजिए कि जो पाप की इच्छा रहती है हृदय में वो दूर हो जाए। परीक्षित महाराज ने कहा एक हाथी तालाब में स्नान करता है, जैसे ही तालाब से निकलता है और बैठता है पृथ्वी पर शरीर गंदा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसका क्या लाभ, आप पाप करो फिर पछताओ, पाप करो पछताओ, तो ये जो पाप की जो इच्छा है ये कैसे निकलेगी हृदय से। और इसके उत्तर में शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा प्राचीन शास्त्रों में आजमीन की कथा प्राप्त होती है। तो 5000 साल पूर्व शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा प्राचीन पुराणों में, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जो लीला है आजमीन की ये बीती होगी 6-7 हजार साल पूर्व। हमारा सौभाग्य है कि भगवतम के द्वारा हमें ज्ञान आज भी प्राप्त हो रहा है। तो आजमेल का जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में। बचपन से ही माता पिता ने धार्मिक शिक्षा दी थी, पत्नी थी बच्चे भी थे। और आजमेल एक दिन जंगल में गया था, किस लिए? पूजा के लिए, फूल लाने के लिए, केवल फूल लाने के लिए नहीं, ये नहीं कि वो सिनेमा देखने गया था, वो गया था बड़े शुभ कार्य से पूजा के लिए फूल लाने के लिए। और जब वो लौट रहे थे उन्होंने देखा एक वैश्य को जो नशे में थी अपने प्रेमी के साथ, दोनों नशे में थे, गले लगा रहे थे। और आजमीर ने इस घटना का स्मरण आरंभ कर दिया। इस स्थिति से बचने के लिए शास्त्र में कहा गया है मन मन भाव मन भक्तो मध्यादि मन नमस्कार सदा मेरा चिंतन करो। भक्ति रसमृत सिंधु में रूपा गोस्वामी हमें अनेक नियम दे रहे हैं, परंतु वो कहते हैं कि इन सब नियमों का मूल उद्देश्य यह है कि हम सदा कृष्णा का स्मरण करें और कभी कृष्णा को भूले नहीं। तो ये होना चाहिए प्रयास कि हम सदा भगवान की लीलाओं का, भगवान के उपदेश का, भगवान के रूप का चिंतन करें। तो आज ही मिल रहे इस वैश्य को पहले अपने घर में रखा नौकरानी के रूप में, और फिर इसी वैष्णव को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये है संगत का प्रभाव। आजमेल गलत संगत में आ गए, वैश्य की संगत में, और इस वैश्य को संतुष्ट रखने के लिए उन्हें हर प्रकार का बुरा काम करना पड़ा। इसलिए शास्त्रों में हमें क्या शिक्षा मिलती है, साधु संग सर्वशास्त्र का लावा मात्र साधु संग सर्वश्री है। भक्तों की संगत में रहो। अगर हम अभक्तों की संगत में रहेंगे तो उस प्रकार की बुद्धि भी अनुकूल होगी, और अगर हम भक्तों की संगत में रहेंगे तो अच्छे विचार रहेंगे। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम सदा किसकी संगत में रहें, भक्तों की संगत में रहें। तो आजमील के 10 बेटे थे इस वैश्य के द्वारा, और 10 बेटे में से सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? प्राचीन समय में ये रिवाज था कि हम बच्चों को भगवान के नाम देते थे, और ये रिवाज केवल हिंदू में ही नहीं, क्रिश्चियन और मुसलमानों में आज भी है। आज भी आप देखते हो क्रिश्चियन लोग अपने बच्चों को बाइबल के नाम देते हैं, मुसलमान लोग अपने बच्चों को कुरान के नाम देते हैं। तो इसका भाव ये रहता है कि आप जब अपने बच्चों को पुकारोगे तो एक प्रकार से आप अज्ञाता सुकृति अनुकूल कर रहे हो, क्योंकि आप भगवान के नामों का उच्चारण भी कर रहे हो। तो आजमील का बड़ा गहरा आकर्षण था सबसे छोटे बेटे के प्रति, जिसका नाम था नारायण। और जब भी वो भोजन खाते थे नारायण को भी साथ बिठाते थे, नारायण तुम खाओ। जब पानी पीते थे तो नारायण को भी पानी पिलाते थे। एक पल भी नारायण से दूर रहना कठिन था उनके लिए। पर आज में अभी वैश्य पत्नी को संतुष्ट रखने के लिए उन्हें हर प्रकार का पाप करना पड़ा, जिसके कारण यमुना जी ने निर्णय किया अब हमें आजमील को नरक में लाना चाहिए सजा भुगतने के लिए। आज यमदूत यानी यमुना जी कौन है? मृत्यु के देवता, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें कर्मों के अनुसार देव प्राप्त हो। तो आजमील ने यमदूत यमराज ने 3 यमदूतों को भेजा आजमील को नरक में लाने के लिए सजा भुगतने के लिए। 3 क्यों? क्योंकि 3 साधन हैं जिनके द्वारा हम भगवान की सेवा करते हैं और जिनके द्वारा हम भगवान को भूलते हैं। वो क्या है? देह, मन और वाणी। इसलिए भगवद गीता में भगवान समझाते हैं ध्येय की क्या तपस्या है, वाणी की क्या तपस्या है और मन की क्या तपस्या है। ध्येय की तपस्या के विषय में भगवान कहते हैं ध्येय द्वारा भगवान की सेवा करो, ध्येय द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करो, और ध्येय द्वारा अहिंसा का पालन करो संक्षेप में, और वाणी वाणी द्वारा भगवान का उच्चारण करो, भगवान की लीलाओं की चर्चा करो, कृष्ण कथा, और जो भी बोलो आदर के साथ। मन की संक्षेप में क्या है? भगवान का चिंतन करो, सारा जीवन बिताओ। तो यहाँ आजमील ध्येय द्वारा मन द्वारा वाणी द्वारा क्या कर रहे थे? केवल यही वैश्य की सेवा। तो यमराज ने 3 यमदूतों को भेजा आजमील को नरक में लाने के लिए सजा भुगतने के लिए। जैसे ही आजमील ने इन यमदूतों को देखा, आप यमदूतों का अगर दर्शन लेना चाहते हो तो भगवान के 36 कद में उनकी तस्वीर है। तो जैसे ही उन्होंने यमदूतों को देखा, घबरा कर बड़े गहरी आवाज से श्रद्धा के साथ उन्होंने अपने छोटे बेटे नारायण के नाम को पुकारा, नारायण निकट में ही खेल रहा था और इतनी गहराई से नारायण के शब्दों को, नारायण को पुकारा कि वहां तुरंत ही विष्णु दूत पहुंच गए। प्रभुपाद जी इस विषय में एक उदाहरण देते हैं कि कई बार पुलिस की गाड़ियां घूमते रहती हैं पड़ोस में और अगर आप फोन करो तो तुरंत पहुंच जाती है। तो मुझे भी इस विषय का अभ्यास हुआ था 2 साल पहले। अमेरिका में एक शहर है बॉयज़ी अमेरिका, जहाँ की यशवंत का एक बड़ा सुंदर मंदिर है। तो उस मंदिर में एक गलत व्यक्ति ने प्रवेश कर लिया था। तो हमारे अनंत रूपा जो कि बॉयज़ी मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, 100 डायल किया। तो जैसे पुकारा पुलिस वालों को, 1 मिनट में पुलिस 4 गाड़ियां पहुंच गई। 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगा होगा। मैं क्लास दे रहा था, उन्होंने जाकर मेरे सामने फोन किया। तो मैंने पूछा, ये मैं मानता हूँ कि अमेरिका में एफिशिएंसी है, कोई इतनी एफिशिएंसी कि 2 मिनट में पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई, 4 गाड़ियां। तो उन्होंने फिर कहा, मैंने पूछा, आई पीपल सो एफिशिएंट यू रीच इन 2 मिनट्स। तो कहने लगे, हम पड़ोस में ही घूम रहे थे जब आपका फोन आया। तो हम एकदम पहुंच गए, वो बिल्कुल पड़ोस में ही थे। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी समझाते हैं, तो जो जो विष्णुदूत हैं वो घूमते रहते हैं, जहाँ भी वो सुनते हैं किसी ने विष्णु के नाम को पुकारा, कृष्ण के नाम को पुकारा, तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। एक समय भक्तों ने न्यूयॉर्क में एक प्रोग्राम का प्रबंध किया था प्रभुपाद जी के लिए, बड़ा हॉल बुक किया था और प्रभुपाद जी को भक्तों ने कहा कि सुनाई दे रहा है आपको, नहीं पहले नहीं था ठीक, पहले बोलना था मुझे, तो किसी को सुनाई नहीं दिया पहले। बड़े हॉल में प्रोग्राम का बंदोबस्त किया था और भक्त ने प्रभुपाद जी को बोला, आज बहुत लोग आएंगे प्रोग्राम में, प्रोग्राम में ज्यादा लोग नहीं आए। ये प्रोग्राम किया था विस्कॉन, एक नई संस्था थी अमेरिका में। तो भक्तों में दुख था कि उन्होंने प्रभुपाद जी को ये सूचना दी कि बहुत लोग आएंगे और इतने लोग नहीं आए, तो सॉरी कह रहे थे प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, नथिंग टू बी सॉरी, आप भक्तों ने कीर्तन किया, वहाँ परम भगवान थे, राधा रानी उपस्थित थी, सारे देवता थे, कुछ नुकसान की बात नहीं। तो जब आप भगवान के नामों का उच्चारण करो, भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित होते हैं। तो जैसे ही आजमील ने नारायण नाम को पुकारा, वहाँ तुरंत ही विष्णुदूत पहुँच गए और विष्णुदूतों ने रोक दिया यमदूतों को, आजमील की आत्मा को नरक में जाने से। या जो यमदूत हैं अर्जुन की आत्मा को निकाल रहे थे हृदय से नरक में ले जाने के लिए। तो यमदूत जो थे वो आश्चर्य हो गए ये देखकर, क्योंकि पहली बार ऐसी घटना बीती थी जबकि उनके स्वामी ने उन्हें भेजा था किसी कार्य के पालन के लिए, किसी ने रोक दिया उन्होंने। तो विष्णुदूत ने पूछा, आप यमराज के प्रतिनिधि हो, हमें ये समझाओ कि धर्म किसे कहते हैं। आप जानते हो क्या हर पापी व्यक्ति को पाप भुगतना पड़ेगा, उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। तो उनके प्रश्नों के उत्तर में यमदूत यहाँ जवाब दे रहे हैं। यमदूत कह रहे हैं कि जो ज्ञान वेदों में है वो है धर्म, और उसके प्रतिकूल जो भी है वो है। दूसरे शब्दों में धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी, धर्मां साक्षात भगवत पवित्रम्। भगवान की वाणी उसे ही हम धर्म मानते हैं। आज समाज में अनेक प्रचारक हैं, पर अगर ध्यान से देखा जाए जो उपदेश वो दे रहे हैं वो शास्त्र पर आधारित नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं, श्रुति स्मृति प्राण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरि भक्ति पाते है वक्त पते। तो भगवान की जो वाणी है हमें उसे हम धर्म मानते हैं। तो यमदूत ने कहा कि जो वेदों का अर्थ है भगवान की वाणी, इस श्लोक में कहा गया है वेदों नरयान साक्षात। प्रभा जी अपने प्रवचन में इन तीन शब्दों पर बल दे रहे थे, वेदों नारायण साक्षात। जो वेद हैं इनका उच्चारण किसने किया है? स्वयं भगवान ने किया है, और वेदों में कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं। जो वेदिक ज्ञान है उसमें कोई अपूर्णता नहीं, कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं। साधारण ज्ञान में जैसे आपने सुना है चार प्रकार की कमियां रहती हैं। हम सब में चलने की इच्छा है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम सब गलती करते हैं, भ्रम में आते हैं, पर परम भगवान में ये कमियां नहीं हैं। इसीलिए वैदिक ज्ञान का एक और नाम है सनातन धर्म। कल सत्य था, आज है, कल भी सत्य रहेगा। ये जो आप भगवद गीता पढ़ते हो ये उपदेश हजारों साल पुराना है। 5,000 साल पूर्व भगवान ने कहा, मैंने ज्ञान दिया था सबसे पहले किसे? सूर्य के देवता विवासन। तो अर्जुन को शक था कि भविष्य में लोग कहेंगे कि भगवान ने ज्ञान विवासन को कैसे दिया जो वो उनसे पहले प्रकट हो चुके हैं। भगवान ने कहा, बहुत बहुत बार तुमने और मैंने जन्म लिया है, मैं सब जन्मों का स्मरण कर सकता हूँ और तुम नहीं। तो धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी, और जो व्यक्ति जो ज्ञान शास्त्र के विपरीत हो उसे हम कहते हैं अधर्म। तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में समझा रहे हैं कि वैदिक ज्ञान जो है परम भगवान से उत्पन्न होता है, तो वो स्वयं उत्पन्न हुआ है क्योंकि ये है भगवान की मान्यता, और वैदिक ज्ञान में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, जो महान संत हैं उनकी सदा ये इच्छा रहती है कि ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुँचे। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस प्रवचन में कहा है परा दुखा दुखी। परा दुखा दुखी का अर्थ है कि एक भक्त जब वो देखता है कि कोई दूसरा व्यक्ति प्रयास कर रहा है दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए, तो वो जानता है ये संभव नहीं है, वो प्रयास करता है उनके उद्धार के लिए। इसलिए कहा गया है वैष्णव जो है परा दुखा। प्रहलाद महाराज सातवें स्कंध में क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, मैंने आपका स्मरण करने की कला प्राप्त कर ली है, पर मुझे दुख उन व्यक्तियों के लिए है जो कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो भौतिक समाज में जो प्रयास किया जा रहा है क्या है? दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का। आपके बाल गंजे हो गए आप तो नकली तरीके से बाल लगा देंगे, आंखें कमजोर हो रही हैं तो कैटरेक्ट लेंस पहन लो। तो ये प्रयास किया जा रहा है, पर कब तक ये बुढ़ापेपन को आप छुपा सकते हैं? तो प्रभुपाद जी समझाने परा दुखा दुखी। इसलिए जो वैष्णव से आचार्य हैं उन्होंने प्रचार की सेवा पर बल दिया। क्यों? प्रचार के माध्यम से हम लोगों की अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। चैतन्य चरितमृत में आप पढ़ते हो, जब चैतन्य महाप्रभु जी एक दिन हरिदास ठाकुर के घर में कुटिया में गए, उन्होंने कहा कि हरिदास ये बताओ कैसे इन मृचों का उद्धार होगा। और हरिदास ने कहा प्रभु चिंता ना करिए, आप चिंता मत करो, हरि के नाम के उच्चारण से इनका उद्धार। तो वैष्णव जो हैं वो सदा ये चाहता है कि ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंचे। अब प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हो बूढ़ी आयु 70 साल की आयु में प्रभुपाद जी भारत से निकले अमेरिका के लिए, क्यों? गुरु जी का आदेश था, पर प्रभुपाद के मन में ये भाव भी था कि चैतन्य महाप्रभु जी का संदेश सबको पहुंचाया है। तो ये होना चाहिए वैष्णव का भाव। प्रभुपाद जी इस विषय की चर्चा करते हैं, पर आगे प्रभुपाद जी ने लेक्चर में समझाया श्रुति, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये श्रवणम कीर्तनम के माध्यम, श्रवणम सुनने से आता है। तो इसलिए हम भागवतम क्लास सुनते हैं, गीता क्लास सुनते हैं, सुने तो ध्यान से सुने, ध्यान से सुनोगे तो इसका बड़ा गहरा प्रभाव होगा। प्रभुपाद जी से एक दिन एक भक्त ने पूछा, योर प्रीचिंग सो एंथुजियास्टिकली, आपने बड़ा उत्साह प्रचार के लिए। प्रभुपाद ने कहा मैंने बड़े ध्यान से सुना था गुरु के उपदेश को, इसलिए बड़े ध्यान से मैं प्रचार भी करता हूँ। तो जब आप सुनते हो, एक तो हमें सुनना चाहिए प्रमाणिक व्यक्ति के द्वारा। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है कि साधु की संगत में रहकर हमें ये उपदेश प्राप्त करना चाहिए, और साधु की संगत में रहकर उपदेश प्राप्त करोगे तो आपको यथारूप असली संदेश प्राप्त होगा, और असली संदेश का उपयोग करोगे तो आप धर्म का पालन कर सकोगे। प्रभुपाद जी इस विषय की चर्चा करते हैं। आगे प्रभुपाद जी ने कहा भगवान का जो ज्ञान है विनम्रता के भाव से प्राप्त होना चाहिए। प्रभुपाद जी इसमें बाइबल का उदाहरण देते हैं, या जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज फॉर द वीक, मतलब कि अगर भगवान को आप समझना चाहते हो तो विनम्रता का भाव हमें अनुकूल करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें क्या उपदेश दिया है, नादपि सुनिचेन करोड़पि हमारे न मना देना कितना देता। ये जो भक्ति, आप सदा हरि के नाम का उच्चारण करना चाहते हो तो हमें क्या होना चाहिए, विनम्रता का भाव होना चाहिए। चैतन्य चतुर्मिता में कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि हमें हमारे गले में इसको लिखकर बांध देना चाहिए, मतलब कि अपने आप को हमेशा याद कराओ कि ये श्लोक कितना महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी इस लेक्चर में और लगभग हर लेक्चर में इस भाव पर बल दे रहे हैं कि अगर आप हरि के नाम को उच्चारण करना चाहते हो सदा तो हमें सहनशील भी रहना है और विनम्रता का भाव। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हैं भगवान के शरणगत होने के विषय में। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो स्वीकार करो, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे त्याग करो। आगे का विनम्रता का भाव तो ये बहुत ही आवश्यक है। विनम्रता का भाव का अर्थ है हम शिक्षा लेने के लिए तैयार हैं, अगर हमारे में कुछ कमी है हम उसे सुधारने को तैयार हैं। और भक्त सदा यही सोचता है कि मेरे में तो इतनी कमियां हैं कि मुझे सुधारना चाहिए। कृष्णदास कविराज जी जिन्होंने हमें चैतन्य चरितमृत दी है उन्होंने कहा कि मेरे में तो इतने अवगुण हैं कि अगर तुम मेरा नाम भी लोगे तो सारे गुण तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे, तो मेरा नाम ही मत लो। हमारी क्या स्थिति है, हम चाहते हैं कि सदा हमारा नाम लिया जाए, अगर कोई गलती से नाम नहीं ले तो हम बिगड़ जाते। आगे प्रभुपाद जी ने लेक्चर में कहा, गीता के संदेश को हमें स्वीकार करना चाहिए किस भाव से? यथारूप। गीता के संदेश को हमें उसी भाव से स्वीकार करना चाहिए जिस भाव से भगवान ने अर्जुन को दिया, और अर्जुन ने इस संदेश को स्वीकार किया। तो आज के इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जो ये वैदिक ज्ञान जो है वो है असली धर्म। तो वैदिक ज्ञान का जो संदेश है ये पूरे मानव समाज के लिए है। हम बीजा प्रदा पिता, मैं हूँ सब योनियों का पिता। ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि जो वैदिक शास्त्रों का संदेश है ये केवल हिंदुओं के लिए है या भारतीयों के लिए है। आपको सब पता हो कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अनुवाद 70 से अधिक भाषा में हो गया है, और आज सारे विश्व में लोग गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए। तो ये है वैदिक ज्ञान। वैदिक ज्ञान है पूरे मानव समाज के लिए। तो और ये पहली बार इतिहास में कि आज वैदिक शास्त्रों का ज्ञान लगभग विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी ने इस संदेश को आगे बढ़ाया, प्रचार किया यथारूप, बिल्कुल बदले बिना। तो जिस भाव से भगवान ने संदेश दिया, अर्जुन ने संदेश लिया, उसी भाव से प्रभुपाद जी ने इस संदेश को पहुँचाया है, और इसलिए लोग इस संदेश को स्वीकार करके अपने जीवन को सुधार रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसी विषय की चर्चा कर रहे हैं कि धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी, और आगे इस श्लोक के तात्पर्य के आज के प्रवचन की समाप्ति में प्रभुपाद जी 12 महाजनों की चर्चा करते हैं। ये ज्ञान भी हमें भगवतम के 6 स्कंध में प्राप्त होता है। यहाँ की यामराज ने कहा 12 महाजन हैं, स्वयंभू निराधा शंभु कमरा कपिलो मनो प्रलदो जनको बलिर भाई कह सकते हो। यामराज ने कहा 12 महाजन हैं जिनके द्वारा हमें ये धार्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में हमें वही उपदेश स्वीकार करना चाहिए जो कि शास्त्र पर आधारित है। इसलिए हर कार्य जो हम करते हैं हम देखते हैं कि शास्त्र पर आधारित है या शास्त्र के विपरीत है। अगर शास्त्र पर आधारित है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, और शास्त्र में हर विषय की चर्चा है, हर प्रश्न का उत्तर है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए जैसे कई लोग सोचते हैं, हाँ ये वैदिक शास्त्र, हाँ भगवान की वाणी थी, पर आज आधुनिक युग में इसका प्रभाव नहीं। प्रभुपाद जी ने बताया है कि आधुनिक युग में भी इस शिक्षा का पालन हो सकता है। प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन हजारों महाविद्यालयों में हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने वैदिक ज्ञान को बड़े सरल रूप से समझाया है प्रजा के। तो इस श्लोक के अनुसार जो ज्ञान वेदों में है वो है धर्म, और जो वेदों में नहीं है जो ज्ञान वो है धर्म। तो आज आप देखते हो कलयुग में अक्सर अधर्म का प्रचार हो रहा है, धर्म का प्रचार नहीं। कई बार लोग पूछते हैं, हाँ तुम लोग धर्म का प्रचार कर रहे हो, धर्म के कारण इतने युद्ध हुए हैं विश्व में, ये किस प्रकार का धर्म है? फिर कुछ लोगों को समझाना पड़ता है वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। धर्म है भगवान की वाणी, और भगवान की वाणी का जो पालन करेगा वो किस विषय में रुचि लेगा? श्रवणम कीर्तनम में, और वो किन कार्यों से बचेगा जो कि भक्ति के लिए प्रतिकूल है, और उन कार्यों का पालन करेगा जो भक्ति के लिए अनुकूल है। तो हमारे वैदिक शास्त्र में लगभग हर प्रश्न का उत्तर है, इसलिए हमें बिना शंका के इस शिक्षा को अपनाना चाहिए, और साधु संघ में बड़ी सरलता के साथ आप इस शिक्षा को अपना सकते हो। जैसे आप सब का अनुभव है, जब आप क्लास में आते हो, ध्यान से सुनते हो, तो सरलता से ये संदेश समझ सकते हो। और अगर आप अकेले में ही रहो और क्लास में नहीं आओ विद्यालय, तो ज़्यादा कठिन है इस ज्ञान को समझना। इसलिए प्रभुपाद जी ने नियम बनाया, जब प्रभुपाद जी ने पहला इस्कॉन का केंद्र खोला था, उन्होंने अपने हाथों से लिखा, हर भक्त जो मंदिर में रहता है या मंदिर के निकट रहता है, उसे सुबह की क्लास में आना चाहिए और शाम की क्लास में, और ध्यान से सुनोगे शास्त्रों को, ध्यान से हरि नाम को सुनोगे, तो क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा? चेतो दर्पण, जिंदगी जो मैन है जल्दी निकलेगी। तो ये है यामराज जी का संदेश। और यामदूतों ने यामराज से पूछा था, आपसे ऊंची भी कोई शक्ति है? और यामराज ने कहा, है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो यामराज ने आगे यामदूतों को कहा, उन व्यक्तियों को मत छूना जिनकी वाणी से हरि नाम निकलता। तो ये हरि नाम का उच्चारण हम सब भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। और जितने ध्यान से आप ये हरि नाम का जाप करोगे, उतनी तेजी के साथ आपका भौतिक आकर्षण नष्ट होगा। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि जब हम बैठते हैं माला का जाप करने के लिए, हम बड़े ध्यान से करें, ध्यान से उच्चारण करें, ध्यान से सुने। जितने ध्यान से सुनोगे उतनी तेजी के साथ जिंदगी में हरे कृष्ण। तो आज एकादशी है, आप लोग लीला अमृता भी पढ़ते हो, 5 मिनट के लीला में तभी पढ़ेंगे। आप हिंदी में पढ़ोगे? प्रभुपाद जी की लीला अक्सर एकादशी को लीला में तो पढ़ते हैं और फ्राइडे को प्रभुपाद का लेक्चर सुनते हैं। तो आज एकादशी भी है और फ्राइडे भी है, आपको डबल डोज मिल रहा है। प्रभुपाद जी का प्रवचन भी सुना और पढ़ोगे थोड़ा। तो इस समय आप प्रभुपाद जी की लीला पढ़ रहे हो, मायापुर की लीला। कई बार भक्तों को लगता है हम प्रभुपाद जी को कभी मिले नहीं, हमारा क्या दुर्भाग्य है। कोई चिंता की बात नहीं, आप प्रभुपाद जी के संदेश, प्रभुपाद जी के ग्रंथों द्वारा, प्रभुपाद लीलामृता द्वारा पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और इस समय आप जो पढ़ रहे हो लीलामृता में, वो है 1973 का समय, जबकि प्रभुपाद जी इस समय मायापुर धाम में है। प्रभुपाद जी ने पहले इस्कॉन केंद्रों की स्थापना की अमेरिका में, पहला केंद्र खुला था न्यूयॉर्क में, दूसरा लॉस एंजेलिस, सैन फ्रांसिस्को, फिर मॉन्ट्रियल। पर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में कृष्णा केंद्रों की स्थापना के बाद प्रभुपाद जी आए, लौटे भारत। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भारत में भी शुद्ध कृष्ण भक्ति की स्थापना हो, क्योंकि विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया था, लीग ऑफ डिवोटीज बनाई झांसी में, और बहुत प्रयास किया था पढ़े लिखे भारतीयों को आकर्षित करने के लिए, तो कोई तैयार नहीं था। प्रभुपाद जी कईयों का प्रचार करते थे, कहते थे आप अपने बेटे को दीजिए भगवान का प्रचार करने के लिए, कोई तैयार नहीं था। तो प्रभुपाद जी की बड़ी इच्छा थी कि भारतीयों को भी एक शुद्ध भक्ति का ज्ञान दिया जाए, और इसलिए प्रभुपाद जी लौटे इंडिया में 1971 में 100 विदेशी शिष्यों के साथ, और उन्होंने भारत के प्रसिद्ध शहरों में बड़े बड़े प्रोग्राम किए। आपके दिल्ली में जहाँ की कनॉट प्लेस में LIC बिल्डिंग है, वहाँ पहले LIC ग्राउंड था, तो उस वहाँ पंडाल किया था, और इस पंडाल में रोज शाम को 20-25 हज़ार लोग आ रहे थे। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि शुद्ध कृष्णा भक्ति का प्रचार हो हिंदुस्तान में, और फिर प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि मायापुर और वृंदावन जो प्रसिद्ध वैष्णव धाम हैं, इन शहरों में बड़ा सुंदर मंदिर बनाया जाए और इस समय आप लीला पढ़ रहे हो, क्योंकि प्रभुपाद मायापुर में थे उस समय। मायापुर में पहली बिल्डिंग तैयार हो रही थी। आज आप जब मायापुर जाते हो अब देखते हो 50 बिल्डिंग, 5,000 डिवोटी निवास करते हैं। पर 73 में पहली बिल्डिंग तैयार हो रही थी और शुरू शुरू में जब भक्त गए बॉम्बे में मायापुर में रहने के लिए सेवा के लिए, कोई सुविधा नहीं थी। भक्त रहते थे कुटिया में, रोज रात को उनके पांव चूहे आके काटते थे, चूहे थे। प्रभा जी ने कई दफा कहा तुम अमेरिकन भक्त आए हो, सब कुछ त्याग करके, सुविधा त्याग करके। वो तो भक्तों को बड़ी कठिन स्थिति में रहकर कृष्ण भक्ति की स्थापना हुई भारत में। तो भक्त तो प्रभा जी ने समझाया जो भक्त है वो सुविधा की चिंता नहीं करता, वो चिंता करता है केवल सेवा के लिए। तो इस कठिन परिस्थिति में भक्तों ने सेवा की और आस्ते आस्ते मंदिर बने। राज प्रभुपाद जी की कृपा से आपके पास हर प्रकार की सुविधा है। पर हमारा भाव सदा ये रहना चाहिए कि हम कठिन स्थिति में भी रहने को तैयार हैं। यही नहीं कि हम सेवा करेंगे केवल अगर हर प्रकार की सुविधा हो। हमारा भाव होना चाहिए जैसे हमारे भक्तों ने कठिन स्थिति में रहकर इस केंद्रों की स्थापना की, प्रचार को बढ़ाया। तो भक्त के मन में केवल प्रभुपाद जी के अनुसार ये भाव होना चाहिए कि मैंने सेवा करना है, ये नहीं कि सुविधा होगी तो ही सेवा करना है। और लीला में तुम्हें इसी अध्याय में आप पढ़ते हो कि जब भक्त पहले मायापुर गए तो उन्हें इतनी कठिन परिस्थिति में रहना पड़ा, तो जब भी वो पीछे नहीं हटे क्योंकि उनके मन में एक ही भाव था प्रभुपाद जी की प्रशंसा। उन्हें पता था कि प्रभुपाद जी मायापुर में चाहते हैं अच्छा अच्छी सुविधा जहाँ की पूरे विश्व के लोग आए कृष्ण भक्ति को अनुभव करने के लिए। और मायापुर धाम में हमारे आचार्यों की इच्छा थी कि एक अद्भुत मंदिर भी बने, जो बन रहा है आपने देखा होगा। तो भक्त जो है उनके मन में ये भाव रहता है सदा सेवा में जुड़े। पढ़िए।
अभी इमारत अधूरी थी तब भी बहुत से अतिथि आने लगे थे। प्रभुपाद नित्य ही ऐसे अतिथियों के साथ कृष्ण भावनामृत पर धैर्यपूर्वक बातें करते हुए घंटों बिताते थे। जो उनके आंदोलन के बारे में जानने के लिए आते या जो केवल अपने और अपनी विचारधारा के विषय में बात करने आते, कभी कभी वे टिप्पणी करते कि अमुक व्यक्ति ने उनका समय बर्बाद किया है, किंतु वे किसी से मिलने से इनकार नहीं करते थे। एक बार श्री ब्रज रतन मोहता नामक एक हिंदू सज्जन अपनी पत्नी के साथ, जो करोड़पति आरडी बिरला की पुत्री थी, कलकत्ता से उनसे मिलने आए। श्री प्रभुपाद ने अपने अतिथियों का समुचित ख्याल रखा, उन्होंने व्यंजन सूची का स्वयं निरीक्षण किया और अपने शिष्यों को श्री मोहता और उनकी पत्नी को परोसने खिलाने के संबंध में विशेष रूप से समझाया। प्रसाद वितरण वैष्णव शिष्टाचार का विशेष अंग था और प्रभुपाद इस बात पर सदैव बल देते थे कि शिष्यों द्वारा अभ्यागतों को प्रसाद तुरंत दिया जाए। प्रभुपाद ने कहा, जल, गर्म पूड़ियाँ, बैगन की भाजी और मिठाइयाँ तुम लोगों को तुरंत देना चाहिए। अतिथियों के संकोच करने पर भी प्रभुपाद उनसे पूरा भोजन करने का आग्रह करते थे।
तो प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी के मन में ये भावना थी कि हर व्यक्ति जो हमारे मंदिर में आए उसे हमें थोड़ा प्रसाद देना चाहिए। पापा जी बड़े प्रभावित हुए थे तिरुपति मंदिर के उदाहरण से। यहाँ की एक हॉल है, जो यात्री भी जाता है वो चाहे तो पूरा भोजन खाने की सुविधा है। तो प्रभुपाद जी ने ये फूड फॉर लाइफ का प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें हम जाकर लोगों को प्रसाद बांटते हैं। तो प्रभुपाद जी चाहते थे जो व्यक्ति भी इस्कॉन के मंदिर में आए उसे थोड़ा कृष्णा प्रसाद जरूर दिया जाए। सबसे बेहतर है अगर आप उन्हें पूरा प्रसाद हो, पूरी हलवा अगर इतना नहीं दे सकते तो कुछ तो दो, हलवा या खिचड़ी लेते हम मांग देते हैं, और नहीं तो जल दो, नहीं तो मीठे शब्दों से लोगों का स्वागत करो। तो जो भी आए यात्री उसे हमें बड़े हृदय से स्वागत करना चाहिए। आपके मंदिर में हजारों यात्री आते हैं रोज, हम सब अगर जब भी हमारे पास समय हो मंदिर में रहकर उनका प्रेम से स्वागत करें और बात करें तो बड़े प्रभावित होंगे। तो कहेंगे हमारे कृष्ण मंदिर गए थे और भक्तों ने इतने आदर से हमारा स्वागत किया कि कभी भूलेंगे नहीं। तो प्रभुपाद जी जब कोई अतिथि आता था तो बड़े ध्यान से उनकी देखभाल करते थे। वो यहाँ वर्णन किया जा रहा है ब्रिज रतन मोडा के, अब तो उनका देहांत हो गया, पर ब्रिज रतन मोडा ने प्रभुपाद जी की काफ़ी सेवा की। उनकी पत्नी थी बिरला जी की बेटी, और वो आए थे प्रभुपाद जी को मिलने मायापुर में। तो प्रभुपाद जी ने बड़े ध्यान से उन्हें बिठाया, भक्तों को शिक्षा दी कैसे उन्हें प्रसाद खिलाना चाहिए। और प्रभुपाद जी यहाँ लिखा है कि कई बार अतिथि आते थे कहते थे कि हमारा पेट भरा हुआ है, हमें और चाहिए नहीं। तभी प्रभुपाद जी कहते नहीं, प्रसाद ग्रहण कीजिए। जो प्रभुपाद जी बड़े ध्यान से अतिथियों की देखभाल करते थे, हमारे में भी वैसा भाव होना चाहिए सब में, कि जो भी अतिथि आए बड़े ध्यान से देखें। और ये पूरे कॉम्प्लेक्स में हम सब रोज 50 अतिथियों को मिलते हैं ना, आप ऊपर से नीचे चल के जा रहे हो, कई लोग ऊपर आ रहे हैं, अगर प्रेम से कहो हरे कृष्णा वो बड़े प्रभावित होंगे। और वैसे खिचड़ी का प्रबंध तो किया हुआ है, पर खिचड़ी में क्या से हम सब शाम को बांटते हैं, सुबह भी बांटते हैं। तो अगर हम पूरा भंडारा नहीं दे सकते हर व्यक्ति को, कम से कम खिचड़ी या हलवा तो हमें देना चाहिए, क्योंकि लोग आएंगे प्रसाद लेंगे। तो ये मोटा जी जो हैं ये प्रभुपाद जी को बकायदा मिलते थे, और जब हम लोग ने बॉम्बे का मंदिर बनाया था उसके बाद प्रभुपाद जी ने मोटा जी को कहा सारे बिल इनके चेक करो, कहीं किसी ने बेईमानी तो नहीं करी। मोटा जी काफ़ी बड़े व्यापारी थे। तो यहाँ पढ़ रहे हो कि प्रभुपाद जी ने मोटा जी को बड़े आदर से स्वागत किया, और प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को ये शिक्षा दी थी कैसे अतिथियों की देखभाल करनी चाहिए। इसी अध्याय में एक और उदाहरण था कि एक दिन प्रभुपाद जी मायापुर की पहली बिल्डिंग में चल रहे थे, वो बिल्डिंग समाप्त नहीं हुई थी, प्रभुपाद जी ने देखा एक कमरे में पंखा चल रहा है और अंदर कोई है नहीं। तो प्रभुपाद जी बड़े गुस्से हुए, और 2 दिन के लिए प्रभुपाद जी ने भक्तों को कहा तुम भगवान की एनर्जी को वेस्ट करते हो, पंखा चल रहा था हम कमरे में कोई था नहीं। एक समय प्रभुपाद जी अमेरिका में वॉक कर रहे थे और किसी कर्मी के बगीचे में नलका चल रहा था बेकार में, तो प्रभुपाद जी ने जाकर नलका बंद कर दिया। तो एक भक्त ने कहा क्यों, प्रभुपाद जी वेस्टिंग कृष्णा एनर्जी। तो भक्त के मन में यही भाव रहता है ये सब की संपत्ति है किसकी, भगवान की, पर हमें इसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। तो एक कमरे में बिजली पंखा चल रहा था तेजी के साथ और कोई कमरे में था नहीं, तो इससे क्या एनर्जी भगवान की वेस्ट हो रही थी, फजूल खर्चा। हमें भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ मंदिर में आश्रम में पंखे चल रहे, बिजली चल रही है, तो कोई है नहीं, तो बेकार में खर्चा हो रहा है। हम सबको बड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर पंखा बिजली का उपयोग नहीं हो रहा तो हमें क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा और पढ़ लो।
श्रीमती ममता भारत के सबसे धनी परिवार की सदस्य होने पर भी श्री रघुनाथ और उनके शिष्यों के सरल सत्कार से संतुष्ट थी। जिस कमरे में वे और उनके पति ठहरे थे वो अभी अधूरा था। उसके फर्श के पत्थर पर अभी पॉलिश नहीं हुई थी। चारों ओर निर्माण कार्य चल रहा था। भक्तजन उन्हें फर्श पर बैठने के लिए केवल एक चटाई और तकिया दे सके थे। तभी वे बहुत संतुष्ट लगते थे और सराहना करते थे।
ठीक है, तो यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि जब भी कोई सुविधा नहीं थी, जब भी प्रभुपाद जी ने चटाई और चादर बिठाकर ऐसा वातावरण रखा था कि अतिथियों का स्वागत हो सकता था, तो हमें अतिथियों का बड़े प्रेम से स्वागत करना चाहिए और हम सबको सदा तैयार रहना चाहिए भगवान का प्रचार करने के लिए। और लीला मृत के द्वारा हमें पूरा इतिहास प्राप्त हो रहा है कि प्रभुपाद जी ने कैसे इस कौन संस्था की स्थापना। आप सब ने लीला मृता पढ़ा हुआ है, अज्ञा प्रोग्राम को। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है कि श्री प्रभुपाद जी ने रखी, कोई प्रश्न है?